बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, औरतों की अमराज में से जो नंबर वन बीमारी है कैंसर में, वो ब्रेस्ट कैंसर है। और ये इतनी कॉमन बीमारी है कि पाकिस्तान में हर 13वीं खातून, एक स्टडी के मुताबिक, उसको कैंसर हो सकता है। यानी अगर फ़र्ज़ करें एक दफ्तर में 26 औरतें काम कर रही हैं, तो उनमें से दो को कैंसर होने के चांसेस हैं, और ये बहुत ही हाई रेट है। जहाँ तक इसकी अवेयरनेस का ताल्लुक है, गो पिछले कुछ अरसे से इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा कोशिशें की गई हैं, मीडिया में भी की गई हैं, डॉक्टर्स ने भी कंपेन की हैं, सिविल सोसाइटी ने भी बहुत कंपेन की हैं, और पाकिस्तान में ये जो पिंक रिबन के नाम से एक पूरी की पूरी तहरीक है जो कि इस सिलसिले में काम कर रही है। लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे यहाँ की बहुत बड़ी पॉपुलेशन, ख़ास तौर पर जो हमारी अंदरून देहाती पॉपुलेशन है, वो अभी भी बहुत सारी तोहमात का शिकार है इस बीमारी के सिलसिले में। अभी भी हमारे पास पेशेंट आते हैं जो आके ये कहते हैं कि अगर हमारे यहाँ गिल्टी है, अगर इसको लोहा लगा, लोहे से मुराद ये कि किसी इंस्ट्रूमेंट को टच किया गया, तो ये फिर कैंसर बन जाएगा। यानी और इस तरह की और बहुत सी तोहमात हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ बहुत सारी ख़वातीन जिनको छाती की गिल्टी होती है, वो पहले दम करवाने के लिए, तावीज़ पढ़वाने के लिए, और यहाँ हमारे पता नहीं और बाकी पाकिस्तान में ऐसा हो, यहाँ सराइकी बेल्ट के अंदर एक मक्खन पढ़ने का रिवाज है कि मक्खन के ऊपर कोई पढ़ के देते हैं और उसके ऊपर लगा देते हैं। तो अगर यानी ब्रेस्ट की एब्सेस हो, एक बीमारी होती है इसमें पीप पड़ जाती है, तो बाज़ वक़्त वो खुद ब खुद फट जाती है। हो सकता है कुछ मरीजों को पढ़ के किसी ने मक्खन दिया हो तो खुद ब खुद फट गई हो, लेकिन जो कैंसर है उसका इस तरीके से कोई इलाज नहीं है, उसका एक प्रॉपर साइंटिफिक इलाज है। तो आपके सवाल का ये जवाब है कि इसकी बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है, और हमारी जितनी भी ख़वातीन हैं उन सबको पता लगना बहुत ज़रूरी है कि ये एक बीमारी है, और अगर ये बीमारी हो जाए तो फिर क्या करना है। आपने ये पूछा है कि ब्रेस्ट कैंसर है क्या। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कैंसर है क्या। हमारे जिस्म के अंदर खुलियाँ हैं जिनको हम सेल कहते हैं ना, और ये सेल ग्रो करते हैं। जो मेरी बॉडी है, ये सेल नए बनते रहते हैं और ये झड़ते रहते हैं, और पुराने जो हैं वो ज़ाया होते रहते हैं, नए आते रहते हैं। ये कुदरत का निज़ाम है। अच्छा, ये जो सेल ग्रो कर रहे होते हैं, ये एक कंट्रोल के तहत ग्रो करते हैं। जैसे जब सेल बढ़ना शुरू होते हैं तो एक जगह पर आकर रुक जाते हैं। कैंसर एक बीमारी है जिसमें मुतद्दद वजूहात की बिना पर, जिसको अभी छोटे से सेशन में डिस्कस करना मुमकिन नहीं है, हमारे जिस्म के अपने सेल एबनॉर्मल ग्रो करना शुरू कर देते हैं। यानी जिगर में फर्ज करने सेल हैं, उनको जितना ग्रो करना चाहिए उससे ज़्यादा एबनॉर्मली ग्रो करना शुरू हो जाते हैं, और जब वो एबनॉर्मली ग्रो करना शुरू हो जाते हैं तो वो जो गिल्टी बन जाती है वो कैंसर होती है। और ये सिर्फ ना सिर्फ ये कि ये यहाँ रहते हैं, बल्कि ये साथ वाले हिस्सों को भी अपने साथ शामिल करना शुरू कर देते हैं। यानी फ़र्ज़ करें अगर जिगर का कैंसर है तो उसने जिगर की नाली को अगर बंद कर दिया तो ये रकान हो जाएगा। अगर फ़र्ज़ करें किसी की यानी अंतड़ियों का कैंसर है तो उसने साथ ब्लैडर है तो ब्लैडर को बंद कर दिया, तो इर्द गिर्द भी एक दूसरे जैसे फैलना शुरू हो जाते हैं ना, अंदर फैलना शुरू होते हैं। और दूसरी अहम बात ये होती है कि ये सेल यहाँ से टूट के खून के जरिए और जरियों के जरिए जिस्म के और हिस्सों में भी चले जाते हैं। मसलन छाती का कैंसर हो तो इसकी जड़ें जो हैं वो हड्डियों में जा सकती हैं, छाती का कैंसर हो इसकी जड़ें दिमाग में जा सकती हैं, और जहाँ वो जाती हैं फिर वहाँ उस ऑर्गन के जो फंक्शन होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती हैं। तो अब ये तो था टोटल कैंसर जो पूरी बॉडी में, तो छाती का कैंसर वो है कि जिसमें छाती में कुछ सेल यानी खुलिए एबनॉर्मल हो जाते हैं, वो शुरू में गिल्टी की शक्ल इख्तियार करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो गिल्टी बड़ी होनी शुरू हो जाती है, उसके बाद वो गिल्टी वहाँ से उसके कुछ सेल टूट के खून के जरिए और हमारे जिस्म में कुछ और फैलने का निज़ाम होता है उसके ज़रिए से पहले बगल में चले जाते हैं, फिर गर्दन में जा सकते हैं, फिर हड्डियों में जा सकते हैं, फिर जिगर में जा सकते हैं, फिर दिमाग में जा सकते हैं, और फिर पूरे जिस्म में फैल सकते हैं। और इस तरीके से जो जिस्म के अपने अफ़ाल हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये जानलेवा बन जाता है अगर इसका इलाज ना किया जाए। लेकिन अगर इस सारे प्रोसेस को रोक दिया जाए जिसका मैं जिक्र आगे करूंगा, तो फिर कैंसर जो है वो काबिल इलाज होता है।
साइंस एंड सिम्टम्स किस स्टेज पे पता चलते हैं, और घर बैठी फीमेल्स कैसे तशखीस करेंगी कि वो किस स्टेज पे पहुंच चुकी
है। देखिए, जो हमारी ख्वातीन हैं उन सबको कुछ बातों का पता होना चाहिए। पहली बात तो ये कि उनको जहन में रखना चाहिए कि हर खातून होना ही एक रिस्क फैक्टर है, खातून होना ही एक रिस्क फैक्टर है ब्रेस्ट के कैंसर के लिए। अच्छा, वो क्या करें? पहली बात यह है कि अगर छाती में कोई गिल्टी नमूदार हो, यानी हाथ लगाने से महसूस हो कि कुछ हिस्सा जो है वो एबनॉर्मल है, वहाँ गिल्टी बनी हुई है, ये पहली निशानी है। या दोनों छातियों के साइज़ गैर मुतवाजन हो जाए, थोड़ा बहुत तो फ़र्क होता है लेकिन एक बहुत ज्यादा फर्क, एक छाती ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है, ये एक साइन है। तीसरा जो निप्पल है, निप्पल अगर डिस्टॉर्ट हो जाए, उर्दू में उसका मुतबादल यानी कि वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, तो इसका भी मतलब यह है कि यह कैंसर शुरू होने का इम्कान है। इसके अलावा छाती के ऊपर जो जिल्द है वो बिल्कुल ऐसे हो जाए जैसे संतरे की जिल्द होती है, सख्त हो जाए, एक खास पोर्शन जरा सख्त सा हो जाए, तो ये भी इस बात की निशानी हो सकती है कि ये कैंसर है। और इसके अलावा अगर निप्पल में से कुछ डिस्चार्ज आना शुरू हो जाए, यानी जो जैसे बच्चे का दूध होता है, दूध के अलावा किसी खातून का, यानी जो बच्चे को दूध नहीं पिला रही, उसकी छाती के निप्पल में से कुछ रुतूबत आनी शुरू हो जाए, तो ये कुछ, तो ये चंद निशानियां हैं। अच्छा, इसके अलावा गर्दन में कोई गिल्टी नमूदार हो जाए या बगल में कोई गिल्टी नमूदार हो जाए, तो ये तमाम की तमाम निशानियां हैं इस बात की कि ये अर्ली ब्रेस्ट शुरू कैंसर शुरू हो रहा है। और इसके लिए मैं आपको भी बता देता हूं कि करें क्या। इस सिलसिले में ना आप कभी नेट पे जाएं और किसी भी अस्पताल में जाएं तो आपको उसके ब्रोशर्स मिल जाएंगे जिसको हम कहते हैं सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट। वो एक पूरा कागज़ है जिसके ऊपर तफसील से बताया हुआ है कि खातून अपनी छाती का खुद मुआयना कैसे कर सकती है। और उसमें यह है कि शीशे के सामने खड़े होके सबसे पहले, मैं बता ही देता हूँ वैसे, कि सबसे पहले हाथ ऊपर करके यूँ देखें और देखें कि ब्रेस्ट दोनों सिमेट्रिकल हैं कि नहीं है। उसके बाद ऐसे करके नहीं बल्कि हाथ को यूँ फेर के और महसूस करें कि आपके हाथ और आपकी चेस्ट की वॉल यानी छाती की वॉल के दीवार के दरमियान में कोई चीज़ आपको गिल्टी तो महसूस नहीं होती। और उसका तरीका यह कि निप्पल पर हाथ रखा जाए और हाथ को ऐसे ऐसे मूव किया जाए चारों तरफ, और अगर कोई गिल्टी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रब्ता किया जाए। और इसके अलावा निप्पल में कोई डिस्चार्ज हो तो ये सेल्फ। अच्छा, इसमें एक चीज़ ना बड़ी ज़रूरी बतानी है कि जब ये बात खासतौर पर पढ़ी लिखी खवातीन को बताई जाती है तो वो इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा वहम का शिकार भी हो जाती है, यानी ऐसे हर वक्त ही इस बात में परेशान रहती हैं कि मेरी छाती में। तो ये भी बड़ा एक बैलेंस रखने की ज़रूरत है। तो महीने में एक दफ़ा सेल्फ एग्जामिनेशन कर लेना चाहिए और अगर उसमें ज़रा सी भी कोई अबनॉर्मलिटी मिले तो फिर आपको डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए।
ये खातून जिनको ब्रेस्ट कैंसर था, जी
जी, देखिए ब्रेस्ट कैंसर जो है ना उसकी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है, यानी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का मतलब यह है कि अगर किसी खातून के जो माँ की तरफ के रिश्ते हैं यानी उसकी अम्मी, उसकी नानी, उसकी खाला, मैटरनल रिलेशंस, इनके अंदर अगर छाती का कैंसर हो तो उस खातून के अंदर आम पॉपुलेशन की निस्बत छाती का कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये बात तो है बिल्कुल सही। इसके अलावा हमारी बॉडी में कुछ खवातीन ऐसी होती हैं कि जिनका पैदायशी तौर पर ही वो जीन होती है उनके अंदर कि उनको कैंसर होना ही होना होता है, जिसको बराका जीन कहते हैं। तो जिस जगह पर, जिन मुल्कों के अंदर ये स्क्रीनिंग का सिस्टम होता है, तो वहाँ उस जीन को अगर डिटेक्ट कर लिया जाए तो ये भी रिकमेंड किया जाता है कि बीमारी होने से पहले ही उसका कोई ना कोई तदारुक वो किया जाए। उसकी बड़ी जो बड़ी मिसाल दी जाती है वो एक मशहूर अमेरिकन अदाकारा है, जुलियाना, अगर मैं पता नहीं गलत नाम ले रहा हूँ कि नहीं, पता नहीं, एक शायद ऐसी है। तो वो बड़ी मशहूर अदाकारा है और उसके बराका जीन पॉजिटिव थी, तो उसने अपनी दोनों छातियों का ऑपरेशन करवा लिया था कैंसर होने से पहले ही पहले ही। हाँ, वो ये है। तो एक बात ये है, लेकिन एक बात और भी बड़ी ज़रूरी है कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि फैमिली हिस्ट्री हो। फैमिली हिस्ट्री हो तो चांसेस ज़्यादा होते हैं, मगर बग़ैर फैमिली हिस्ट्री के भी कैंसर ब्रेस्ट हो सकता है। यानी एक खातून की फैमिली में किसी को भी ना हो, उसको भी पहली दफ़ा, जिसको हम स्पोरेडिक कैंसर कहते हैं, वो भी हो सकता है।
स्पोरेडिक कैंसर, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो इसको ज़्यादा इन्हांस करते हैं, हम कैसे उन्हें अवॉइड करेंगे?
जी देखें, ये जो हमें साइंटिफिक स्टडीज़ बताती हैं और ये सारी चीज़ें ना चेंज होती रहती हैं। जिस वक्त मैं छोटा सा था, छोटा सा मना दिया कि जब मैं MBBS शुरू शुरू में पढ़ता था, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में, तो हमें ये किताबों में पढ़ाया जाता था कि ये वेस्ट की डिज़ीज़ है, ये मगरिब की डिज़ीज़ है, और ये जो डिज़ीज़ है ये ओल्ड एज की डिज़ीज़ है, और ये उन लोगों के अंदर ज़्यादा होती है कि जिनकी शादी जो है ना वो लेट होती है, जिनका एक्चुअली जो पीरियड्स हैं वो लेट शुरू होते हैं, यानी उनका जो एक्टिव रिप्रोडक्टिव एज है वो छोटी होती है, यानी जिनका लेट मेनार्के होता है और जिनका अर्ली मेनोपॉज होता है उनके अंदर, और ये उनमें होता है जिनकी शादी नहीं होती, और ये उनमें होता है जिनके बच्चे नहीं होते, फिर उनमें से होता है जिन्होंने बच्चों को दूध ना पिलाया हो, ब्रेस्ट फीडिंग ना की हो, ठीक है ना। और ये सारी की सारी बातें ना कही जाती थी। अच्छा, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, हम स्टडीज़ देखते रहे और देखा कि पाकिस्तान में भी फिर साइंटिफिक डाटा इकट्ठा होना शुरू हुआ, तो हमने यहां देखा कि 20-20 साल की लड़कियों को भी हमने ये कैंसर देखा है, और ये उनको भी देखा है कि जिनके 6-6 बच्चे थे, और वो उनको भी देखा है कि जो ब्रेस्ट फीड करती थी।
तो
लिहाजा एक बात है, ये बात तो दुरुस्त है कि चूंकि ये इस बीमारी का हार्मोन्स के साथ बहुत ताल्लुक है, और वो खवातीन जिनकी रिप्रोडक्टिव लाइफ अर्ली शुरू हो जाती है उनके अंदर स्टैटिस्टिकली इसके चांसेस कम होते हैं, लेकिन बहरहाल कोई भी खातून इससे इम्यून नहीं है।
अब अवेयरनेस हम उन इलाकों में कैसे पहुंचाएं जिन पे हमारा ना प्रिंट मीडिया हमें एक्सेस दे रहा है या फिर ना हमारा।
जी बिल्कुल, ये बात सही है, चूंकि हमारी मुल्क की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, 22 करोड़ तो हम कहते हैं ना, वैसे पता नहीं है कितने ऐसे हैं जो रजिस्टर ही नहीं होते, तो एक्चुअली 22 करोड़ से तो बहुत ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन है, और 51% एक स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक ख़वातीन हैं, तो वो जो एडल्ट ख़वातीन हैं वो तो डायरेक्ट ही उनको तक बात पहुंचनी चाहिए, और जो बच्चियां हैं अभी तो उनको भी पहले पता होना चाहिए कि ये पार्ट ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। मेरे ख्याल के अंदर एक तो कैंसर, ना सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर बल्कि तमाम बीमारियों की अवेयरनेस हमारे कैरिकुलम का हिस्सा होनी चाहिए, और बच्चियों को तो खास तौर पर 7वीं 8वीं 9वीं के बाद ये लफ्ज़ मानूस होने चाहिए उनके लिए कि छाती का कोई कैंसर क्या होता है, उसमें तो इनको पता होना चाहिए। अच्छा, अब जितने बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं उसे बहुत ज़्यादा बच्चे स्कूल नहीं जाते, यानी जितने बच्चे जाते हैं उनके लिए मैं हमेशा से ये बात प्रमोट करता रहा हूँ कि 2-3 बड़े ज़बरदस्त किस्म के हमारे पास रस्ते हैं जिनको हम कभी यूज़ नहीं करते, उनमें से एक मस्जिद है। मस्जिद जो है वो कम्युनिटी सेंटर होता है, और कभी आप मुल्क से बाहर जाएं ना जहां अकलियत हो, तो मुसलमान अकलियत होते हैं, अमेरिका में जाके देखें, इंग्लैंड में जाके देखें, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, वहां की मस्जिद मस्जिद वाला रियल रोल प्ले करती है, जो कि एक कम्युनिटी सेंटर है जिसमें जो बैठक है जिसमें सारे बैठ के अपने प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। हम हमारे जो इमाम मस्जिद हैं हम उसको इसमें इन्वॉल्व करें। आप देखिए अभी भी आप दाएं तरफ देखेंगे तो आपको मस्जिदें नजर आएंगी, बाएं तरफ देखेंगे आप, अभी ज़ोर का टाइम होगा ना तो हर तरफ से अजानों की आवाज़ आ रही, तो हमारा तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है। तो ये तो बहुत दफ़ा, यानी मैंने इस बात को भी ऊपर के लेवल में भी लोगों को, हुकूमत के जो जिम्मेदार लोग हैं उन तक भी पहुंचाया है कि हमें जिस बात की भी अवेयरनेस क्रिएट करनी है हम मस्जिद के प्लेटफॉर्म को बहुत यूज़ कर सकते हैं। अब आप देखिए ना कि अगर घर के अफराद नमाज पढ़ने गए हैं और वहाँ उनको पता लगा है वो आके अपनी खवातीन को बताएंगे, तो इस प्लेटफॉर्म को बहुत यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा आजकल वो पढ़े लिखे होंगे, जो सोशल मीडिया हर एक के हाथ में है, तो जहाँ इसके ऊपर और बहुत ही फजूल और बिल्कुल ये गैर मुफीद किस्म की चीज़ें आती रहती हैं, तो वहाँ कंटिन्यूसली जो मुफीद पैगामात हैं जिनमें से अवेयरनेस भी है वो कंटिन्यूसली आते रहना चाहिए, तो किसी ना किसी की नज़र पड़ जाती है और वो फिर आगे आगे होना शुरू हो जाता है। तो सोशल मीडिया की पावर को यूज़ करना चाहिए, प्रिंट मीडिया भी कुछ हल्कों में तो है लेकिन ये इसको बहुत यूज़ करना चाहिए। मस्जिद की पावर को हमें ज़रूर अपनी सोसाइटी में यूज़ करना चाहिए हर काम के लिए, ये मेरा ख्याल है।
अवेयरनेस और तशखीस हो चुकी है डिजीज की, पाकिस्तान की खवातीन में एक डर बैठा हुआ है कि हम लोग ये नहीं करवा सकते, वेस्ट वालों के ये तो बहुत इजी है, वो ये ऑपरेशन करवा लें, हम कैसे करवाएं, सोसाइटी में हमने रहना भी है, तो उनको क्या कहेंगे, ये ट्रीटमेंट क्या है और कितना मुश्किल है?
देखिए पहली बात तो ये है कि ब्रेस्ट कैंसर जो है ना वो एक बीमारी नहीं है, कि इसको ब्रेस्ट कैंसर है इसको नहीं है, ऐसा नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर की स्टेजेस हैं, जो स्टेज वन बीमारी है ना वो टोटली मुख्तलिफ है स्टेज टू से, और स्टेज टू मुख्तलिफ है स्टेज थ्री से, और फिर हर स्टेज के अंदर भी इसकी मुख्तलिफ वैराइटीज़ हैं। कुछ ट्यूमर जो हैं वो हार्मोन को सेंसिटिव हैं, कुछ हार्मोन को सेंसिटिव नहीं है, कुछ की वैराइटी डिफरेंट है। लिहाजा अगर मैं बहुत टेक्निकल डिटेल में नहीं जाना चाहता लेकिन अगर देखा जाए तो जो छाती का कैंसर है ना वो तकरीबन 40-42 डिफरेंट बीमारियों का एक ग्रुप है, जो कि मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन से वो बीमारी और तरीके से बिहेव करती है। अगर हम इस बीमारी को बहुत ही जल्दी पकड़ लें, यानी शुरू शुरू में पकड़ लें, तो ये बीमारी तकरीबन काबिले इलाज है। और एक ज़माने में ये था कि जब ये बीमारी, मैं आपको पूरा बताता हूँ कि अगर किसी को हो तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप क्या है। देखें यह है कि अगर किसी को ज़रा सा भी शक पड़ता है ना कि मुझे छाती का कोई कैंसर है, अगर तो वो फ़र्ज़ करें गिल्टी का पता लग जाता है, तो हमें फौरी तौर पर कुछ टेस्ट करवाने के बाद उस गिल्टी को का कोई ना कोई टुकड़ा बाहर निकाल कर उसका मुआयना कराना ज़रूरी होता है, और आजकल उसको बायोप्सी कहते हैं। ये बायोप्सी एक नीडल की वजह से होती के ज़रिए से होती है, इसे ट्रू कट कहते हैं, और उसमें बिल्कुल दर्द नहीं होता, जैसे आम टीके का दर्द होता है, जिसके ज़रिए से उस सुई के ज़रिए एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लिया जाता है। जब हमें पता लग जाता है कि ये कैंसर है फिर हम उस टुकड़े के अंदर ना सिर्फ हमें कैंसर का पता लग जाता है बल्कि ये पता लग जाता है कि ये इसकी कौन सी वैरायटी है। यानी उसको जो लोग थोड़ा बहुत समझते हैं तो मैं मेडिकल टर्म्स बोल देता हूँ कि उनके अंदर हार्मोनल रिसेप्टर पॉजिटिव ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन पॉजिटिव हैं कि नहीं है और ये इन्वेड कर रहा है कि इन्वेड नहीं कर रहा। फिर एक और रिसेप्टर होते हैं जिसे HER2 कहते हैं वो है कि नहीं है। बहरहाल आप इस लंबी तफसील में जाइए, वो हमें उसकी नौइयत को बता देता है कि कैसी नौइयत है। जब ये पता लग जाता है उसके बाद फिर मरीज के कुछ टेस्ट किए जाते हैं कि वो कितना फैला हुआ है, जिसको हम स्टेजिंग कहते हैं। यानी क्या बगल में है कि नहीं है, हड्डियों में तो नहीं कहीं गया हुआ, जिगर में तो नहीं गया हुआ। तो ये सारे टेस्ट हैं ये करवाए जाते हैं। अच्छा, इसकी बुनियाद पर हम छाती के कैंसर को फिर चार स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, Stage 1, Stage 2, Stage 3, Stage 4। जितनी जितनी स्टेज ऊपर चली जाती है वैसे वैसे बीमारी सीरियस होती जाती है और वैसे वैसे उसकी प्रोग्नोसिस यानी उसका ये इम्कान कि वो कितना ठीक हो जाए वो कम होता जाता है। Stage 1 की बहुत अच्छी प्रोग्नोसिस है और उसका वो इलाज क्या है। कई सूरतों के अंदर जब ये बीमारी बहुत छोटी हो तो हम छाती को बचा भी सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर ऑपरेशन में पूरी छाती उतारनी पड़ेगी। अगर वो हालात मवाफिक हों, ट्यूमर की टाइप वो हो जो कि जिसमें कि हम छाती को बचा सकते हैं, तो हम सिर्फ वो पोर्शन जिसमें ट्यूमर है उसको निकालते हैं और बगल में से हम कुछ लिम्फ नोड निकाल के चेक करते हैं कि भाई कहीं वो तो इन्वॉल्व नहीं है। तो ये भी, और ये भी मुमकिन है कि बस हम पूरी छाती का ऑपरेशन ना करें। अच्छा, और बाज़ुकात ये होता है कि उसकी वैरायटी इस किस्म की होती है कि हमें पूरी की पूरी छाती उतारनी पड़ती है। अच्छा, चाहे हम छाती उतारें चाहे हम छाती ना उतारें, हर पेशेंट में सिर्फ सर्जरी इलाज नहीं है। सर्जरी के साथ हमें कीमोथेरेपी, कभी कभी रेडियोथेरेपी और कभी कभी हार्मोन थेरेपी भी देनी पड़ती है। क्योंकि बीमारी है इस किस्म की कि जब तक हम उसको मुकम्मल तरीके से अटैक करके ख़त्म नहीं करेंगे तो बीमारी ख़त्म नहीं होगी। लिहाजा छाती बच सकती है मगर ये डॉक्टरी फैसला कर सकता है कि बच सके। और अगर फ़र्ज़ करें पूरी छाती उतार भी दी जाए तो आजकल ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी अवेलेबल होती है जिसमें प्लास्टिक सर्जरी के ज़रिए से ब्रेस्ट को रिकन्स्ट्रक्ट भी किया जा सकता है। हमारे यहाँ हमारी ऑलमोस्ट सारी ख़वातीन दुपट्टा लेती हैं, चादर लेती हैं, अपने सीनों को सामने से उन्होंने ढांपा होता है। बहुत सारी ख्वातीन ऐसी मैंने देखी हैं कि उनको ऑफ़र किया जाए कि हम बाद में आपकी प्लास्टिक सर्जरी से छाती वो बना दें तो वो कहती हैं नहीं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और इस तरह के ब्रॉ मिलते हैं कि जो कि दूसरे ब्रेस्ट के साइज से मैच करते हुए और उसकी बाहर से फील बिल्कुल ऐसा ही है कि वो जो एक ज़ाहिर खातून को होता है ना कि वो देखने में बुरा ना लगे, कॉस्मेटिकली बुरा ना, तो वो ब्रॉ होते हैं जो पहन लिए जाते हैं और जिनकी वजह से बाहर से बिल्कुल भी पता नहीं चलता। और अगर किसी का एक्सीडेंटल हाथ लग जाए तो वो बिल्कुल उसकी फील भी वैसी होती है जैसे नॉर्मल गोश्त की फील होती है। तो ये सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। देखिए, मैं वो आपने ये कहा था कि वो कहते हैं कि हम ऑपरेशन नहीं कराते, ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ज़िंदगी सबसे ज़्यादा कीमती है। अगर फ़र्ज़ करें किसी का एक हाथ जो है वो पूरा गैंग्रीन हो गया हो तो अब हाथ बचाने के चक्कर में पूरा पूरा इंसान तो ज़ाया नहीं किया जा सकता। तो सिर्फ छाती के बचाने के सिलसिले में पूरा इंसान तो ज़ाया नहीं किया जा सकता। और इस चीज़ में ना, इस बीमारी में और हर बीमारी में टाइम बहुत अहम है। अगर आप वक्त के ऊपर ये कर देंगे फिर तो ठीक हो जाएगा, अगर वक्त पे नहीं करेंगे फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा।
थैंक यू सो मच।